नियमसार कारण कार्य नियम पुस्तक दुसरी लेक्चर नंबर 77 ओम नमः सीते शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो सव्वसाहूनं नमीऊनं वीरं अनन्तवरणानदं सनसहावं वोच्छामि नियमसारं केवली सुदकेवली भणिदम्। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभु मलधारी देव जी की जो टीका है तात्पर्य वृत्ति और उस पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन हुए हैं और ये कारण कार्य नियम दूसरी पुस्तक अभी हमारी शुरू हुई और हम आए हैं 25 नंबर के पृष्ठ पर 25। ये दूसरा पैराग्राफ वहां से हम पढ़ेंगे। ये बात हो रही थी कि ये जो पर्याय रूप जो तत्व कहे हैं जीवादि बहिर तत्व कहा था उसको गाथा में तो कहते है ही है, परंतु यहाँ टीका में कहा था वो खरे खर उपादेय नहीं है, आदरणीय नहीं है, उसका आश्रय करने लायक नहीं है, उसमें एकाग्र होने लायक नहीं। ज्ञान के तो गेय है, जानने में तो जरूर आएंगे।
यहाँ एक जगह अस्थि से कथन ओरिजिनल में था, अस्थि से कथन था, और अभी यहाँ टीका में निगेटिव मतलब नास्ति से कथन किया।
हाँ, तो यहाँ कहते हैं वो तो आत्मा खरेखर उपादेय छे, जो शुद्धात्मा पारिणामिक भाव त्रिकाली स्वभाव भाव वही आदरने योग्य आश्रय करने योग्य उसी को जानते रहने योग्य है। तो ये कहते कि औदयिक आदि चार भावांतरों ने अगोचर हुआ थी, क्योंकि उसी को जानते रहने से समय दर्शन ज्ञान चरित्र होगा, किसको स्वभाव भाव को, परंतु ये चार भावों के उसके आश्रय से नहीं होगा, उसके अगोचर ने आप कहेंगे औपशमिक भाव में तो समय दर्शन हो रहा है, औपशमिक सम्यक तो होता है, तो उस पर्याय के द्वारा जाना कि नहीं। हाँ, परंतु उस पर्याय के आश्रय से नहीं जाना, ये कहना चाहते उसके अगोचरण है। उसके पेज नंबर है 25 और ये 24 नंबर के पेज पर जो बोल्ड में लिखा था ना, आत्मा ने आवा आत्मा ने आत्मा खरेखर उपादेय छे। और दूसरी बात कही थी औदयिक आदि चार भावांतरों ने अगोचर, भावांतर ने अन्य भाव, अन्य भाव क्यों कहा, पारिणामिक भाव को छोड़कर जो अन्य है उसको भावांतर कहा, पर्याय है और औपाधिक भाव है, कर्म सापेक्ष होते हैं, है तो जीव के, परंतु यहाँ पर्याय रूप भाव है और उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय नहीं उत्पन्न होगी। अब यहाँ हम आते हैं 25 नंबर के पृष्ठ पर, कहे छे ए चार भाव थी अगोचर छे, सेकंड पैराग्राफ। एक बाजू एम कहे कि समय दृष्टि ने गोचर छे, गम्य छे, क्या कहते हैं, समय दृष्टि जानने वाला तो समय दृष्टि है, समय दर्शन की पर्याय में उसका ग्रहण हुआ है, और एक बाजू ये दूसरी बात कहे कि उसको अगोचर है, यानी ये अपेक्षा हमें समझना चाहिए। देखो ए आगल कहे सम्यक दृष्टि ने गम्य छे कि आत्मा केवो छे, यानी समय दृष्टि ही जानता है कि आत्मा कैसा है। अहीं कहे छे कि समय दृष्टि ने पर्याय छे, देखो सम्यक तो जो है वो क्षोपशम सम्यक तो होता है, औपशमिक होता है या क्षायिक भी हो सकता है, तो कहते सम्यक दृष्टि ने पर्याय छे, ये तो क्षोपशम क्षायिक आदि छे, आदि ने औपशमिक भी हो सकती है, एनाथी अगोचर छे एटले के एना आश्रय थी गम्य नथी। देखो अपेक्षा समझना, एक बाजू कहते कि समय दर्शन के द्वारा जानने में आ रहा है और यहाँ कहते कि उसके अगोचर है, यानी समय दर्शन के पर्याय के आश्रय से जानने में नहीं आएगा, तो त्रिकाली परम परिणामी भाव ध्रुव भाव को जानते रहने से ये समय तो प्रकट होने वाला है। आश्रय तो परम स्वभावनो परम उत्कृष्ट है ना, और ये अपना है। तो आश्रय तो परम स्वभावनो आश्रय करवाथी गम्य छे, आश्रय तो नहीं वो एक वाक्य नहीं है, परम स्वभावनो आश्रय करवाथी गम्य छे। आवी वातो हवे आवो उपदेश छे कि नहीं? आ अहीनो पुस्तक छे, मुमुक्षु पूछते है पर्याय नो सामर्थ्य। उत्तर, पर्याय नो सामर्थ्य नथी, पर्याय नो लक्ष्य करवाथी उत्पन्न थाय छे, सॉरी पर्याय नो लक्ष्य करवाथी विकल्प उत्पन्न थाय छे, ए अपेक्षा थी चार भाव थी अगम्य छे, नहींतर उपशम भाव शोपशम भाव अने क्षायिक भाव थी गम्य छे। क्योंकि वो समय दर्शन की पर्याय तीनों प्रकार की हो सकती है, और उसके द्वारा तो आत्मा जानने में आता है, जानने में आता है, उसी समय सम्यक ज्ञान भी हुआ है, आत्मा का अनुभव हुआ है। सम्यक दर्शन थी तो गम्य छे, तो सम्यक दर्शन उपशम शोपशम अने क्षायिक छे, तेनाथी तो गम्य छे, गम्य छे ने जानने में आता है। पण अहीं कहेवानो आशय एम छे के ए उपशम शोपशम क्षायिकना आश्रय थी गम्य नथी। माटे चार भाव थी अगोचर छे एम कहेवामां आव्युं। समझानुं काई पुस्तक छे के नहीं? औदयिकादि चार भावांतरोने नीचे लख्युं छे। भावांतर एटले अन्य भावो, भावांतर छे ने, उस दिन हमने देखा था भावांतर का अर्थ क्या था, जैसे भाषांतर होता है, देशांतर होता है, अन्य, जिसके अन्य भाव को भावांतर कहा। अन्य भाव एटले पोतानो पारिणामिक त्रिकाणी स्वभाव ज्ञायक, एनाथी चार अन्य भाव छे, चारे भाव अन्य छे। जेम सात तत्व ने परद्रव्य कहा, तेमा चार भाव पण निश्चय थी परद्रव्य छे। क्या कहा? देखो ये पर्याय है, और यहाँ तो कहते द्रव्य, देखो वस्तु जो है द्रव्य पर्यायात्मक होती है, वहां जो द्रव्य कहने में आता है, ये छह द्रव्य जब कहते तो वो सारा पूरा गुण पर्याय का समुदाय वो द्रव्य है। परंतु जब हम द्रव्य में भी फिर भेद करते हैं द्रव्य और पर्याय, वहां द्रव्य तो ध्रुव अंश को कहते हैं, वो ध्रुव अंश उसको भी द्रव्य ही कहेंगे, और जो पर्याय अंश तो कहते वो सामान्य है वो ध्रुव अंश है, और वो पर्याय वो विशेष भाव है। तो बार बार स्वामी जी की चार भाव है ने, औपशमिक शौपशमिक शायिक और औदयिक, ये चार भाव। अन्यत्र तो औदयिक भाव का निषेध करने में आता है, परंतु यहाँ तो चारों भावों को, क्योंकि वो पर्याय रूप है लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो भावांतर ने अन्य भावों, पोतानो त्रिकाली ज्ञायक भाव प्रभु, एनाथी आ चार अन्य भाव छे, ए भावांतर नी व्याख्या थई। औदयिक औपशमिक शौपशमिक अने क्षायिक ए चार भावो परम पारिणामिक भाव थी अन्य होवाने लीधे, परम पारिणामिक ज्ञायक भाव जे छे एनाथी आ चार भाव अन्य छे। हा द्रव्य स्वभाव, ये स्वभाव को यहाँ द्रव्य कहा या द्रव्य स्वभाव कहा, जे शुद्ध चिदानंद प्रभु छे ए भाव थी पण आ क्षायिक भाव अन्य छे। देखो क्योंकि क्षायिक भाव ये नया उत्पन्न हुआ है, पहले अनादि से तो नहीं था, और द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत कायम एक रूप जो है, और उसको किसी भी कर्म की किसी भी कोई भी अपेक्षा नहीं, वो तो है और है, वो उत्पन्न नहीं हुआ है। क्षायिक भाव नया उत्पन्न होता है, नहीं था उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान है कि अभी हमें उत्पन्न होगा, तो वो जीव के अपने ही पर्याय है, अपने से होगी, परंतु वहां सामने कर्मों की अवस्था देखकर इसको नाम क्या देते, क्षायिक, क्योंकि वहां कर्म की क्षय रूप अवस्था पाई जाएगी। अभिवाद वितराग सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा की आ वाणी छे, लोगों ने एकांत लागे, लोगो कहे ए सोनगढ़ नु एकांत छे, प्रभु तारी चीज ने तने खबर नथी। देखो ये स्वभाव भाव और पर्याय, इसमें इतना भेद ज्ञान क्यों करना है, क्योंकि अनादि से ये पर्याय में ही अपने को उतना ही मानकर चल रहा है, और उसी का लक्ष्य करता है, और वो स्वभाव भाव का लक्ष्य नहीं कर रहा है। આવી વાત તે તારી ચીજને ખબર નથી પ્રભુ. આ હા એકાંત છે, વ્યવહારથી ના પાડે છે કે વ્યવહારથી થતું નથી. સિદ્ધાંતમાં લેખ છે કે વ્યવહાર સાધક છે અને નિશ્ચય સાધ્ય છે. એ તો વ્યવહારનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ, એ વ્યવહાર એની જો અન્ય જો એ વિચાર ભાવ હૈ યા અન્ય ભી જો પર્યાયરૂપ ભાવ હૈ યા કહી શુભ ભાવ કો ભી જહાં જિસકો વ્યવહાર નામ સે બતાયા જાતા હૈ વો હોતા હૈ તો ઉસકા જ્ઞાન કરાને કે લિયે બસ કહેને મેં આતા હૈ પરંતુ ઉસસે યે મોક્ષ માર્ગ નહીં હોતા પ્રકટ. વહાં તો કહેતે દ્રવ્ય કી સત્તા જુદી ઓર પર્યાય કી સત્તા જુદી. સત્તા કહેકર દૂસરો, ક્યોંકિ સાત તત્વો મેં ઉસકો જુદા નામ હૈ તો ઉસકી સત્તા ભિન્ન હૈ ના, તો બિલકુલ ઉસસે ભેદ જ્ઞાન કરાયા જાતા હૈ. એ 26 નંબર કે પૃષ્ઠ પર અભી પહેલી લાઈન, પ્રભુ સાધક તો પોતાના રાગથી ભિન્ન થઈને અનુભવ થયો તે સાધક છે. સાધક એની જો સમય દૃષ્ટિ હૈ ઉસકો સાધક કહેંગે. તો ઉસને કૈસા અનુભવ કિયા હૈ તો રાગથી ભિન્ન થઈને. રાગ કા અભી અભાવ નહીં હુઆ હૈ, પર્યાય મેં રાગ ભાવ હૈ, પરંતુ ઉસને રાગ સે મેં જાનને વાલા તત્વ ભિન્ન હું એસા જાન લિયા હૈ. તો પોતાના રાગથી ભિન્ન થઈને અનુભવ થયો તે સાધક છે. એમાં રાગ બાકી છે એને ઉપચારથી સાધક કહીને કથન કર્યું છે. ક્યાં કહેના ચાહતે, દેખો જબ સમય દર્શન હોતા હૈ ચૌથે ગુણસ્થાન વાલા હૈ તો અનંત અનુબંધી અભી નહીં રહા, ઉસકો ઉત્પન્ન હી નહીં હોતા હૈ ઓર હમ કહેંગે વો કર્મ ભી ઉસકા ઉદય મેં નહીં આ રહા હૈ. તો ઉસકો અપ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાન સંજ્વલન ચાર અભી તીન કષાય બાકી હૈ. તો ઉસકે દેવગુરુ શાસ્ત્ર કે પ્રતિ ભક્તિભાવ હૈ, વો જો શાસ્ત્રો કા જ્ઞાન હૈ વો સબકો ઉસકો વ્યવહાર કહેને મેં આતા હૈ. તો સાધક કોણ હૈ, વો તો અંતરંગ મેં જો ઉસને સમય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ પર્યાય પ્રકટ કી હૈ ઉસકી અપેક્ષા સે ઉસકો સાધક કહા, પરંતુ ઉસકે અભી બાહ્ય મેં એસે જો સ્વભાવ હૈ ઉસકો ભી સાધક કહે દેતે વ્યવહાર સે યાની ઉપચાર સે કહેતે. ઇસલિયે શાસ્ત્ર મેં ઉસકો સાધન કહા યા સાધક કહા ઓર યે સાધ્ય કહા. જૈસેનાચાર્યની ટીકામાં ઘણું આવે છે, સમયસારમાં જૈસેનાચાર્યની ટીકા છે ને એ સમયસાર લિખા હૈ કુંદકુંદાચાર્યને, ઓર ઉસ પર બહોત સારે આચાર્યોને ટીકા ભી લિખી. જૈસે આત્મખ્યાતિ નામ કી ટીકા વો અમૃતચંદ્રાચાર્યને લિખી, તો જૈસેનાચાર્યને ભી ઉસ પર ટીકા લિખી હૈ. તો ઉસમે લિખા હૈ વ્યવહાર સાધન નિશ્ચય સાધ્ય એ ટીકામાં ઘણું આવે છે, એ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં લીધું છે. નિશ્ચયાભાસ નિશ્ચયને વ્યવહાર બે ભાવમાં, એને વ્યવહાર કેમ કહ્યો કે જ્ઞાન કરાવવા માટે. યહાં પર કર્મો કી ભી બાત જો ઇતની વિશેષતા સે યા ઇતની ડિટેલ મેં બતાઈએ, ઉસકા જ્ઞાન કરાને કે લિયે, ક્યોંકિ જ્ઞાન કિસકો નહીં જાનેગા, સબકો જાનેગા કે જો મુનિ યોગ્ય જો અંતરંગ સ્થિરતા હૈ, ઇતના પ્રચુર સ્વસંવેદન હૈ, વહાં ઉસ જીવ કો બાહ્ય મેં કૈસે ભાવ હોતે હૈ, તો 28 મૂળગુણ પાલન કરને કે ઉનકે ભાવ ચલ રહે, નગ્ન દિગંબર મુનિ અવસ્થા હૈ, યે સબ અંતર બાહ્ય ઉનકા સ્વરૂપ બતાયા જાતા હૈ, તો વો કરને સે વો પ્રકટ નહીં હુઆ અંતરંગ મેં, પણ બાહ્ય મેં કૈસી ઉનકી અવસ્થા પાઈ જાતી ઉસકા જ્ઞાન કરાયા જાતા હૈ. ઇસલિયે ઉસકો વ્યવહાર કહેકર સાધક કહીં કહીં કહે દેતે, પરંતુ શાસ્ત્ર મેં જો કથન હતા હૈ ઉસકા અર્થ સમજના હમારી જિમ્મેદારી હૈ. લૌકિક મેં જીસ અર્થ મેં જીસ પદ્ધતિ સે કથન હોતા હૈ ઉસકી વહી કથન પદ્ધતિ શાસ્ત્ર મેં નહીં હોતી, ઉસકી કોઈ કથન પદ્ધતિ જુદી હોતી, ઓર વો કથન પદ્ધતિ અગર હમ નહીં સમજતે હૈ તો હમ અર્થ મેં સે ભી અનર્થ હો જાતા હૈ, અપના સહી અર્થ ગ્રહણ નહીં હોતા હૈ, ક્યોંકિ હમારી જો લૌકિક ભાષા હૈ વૈસે વહાં હમ ગ્રહણ કર દેતે હૈ. દેખો ઇસકો સાધક કહાના સાધક કહાના ઇસકા ફિર ઉસકા આગ્રહ રહેતા હૈ, ક્યોંકિ અનાદિ સે શુભ ભાવ કા આગ્રહ હૈ, શુભ કરતે રહેને સે હી હોતા હૈ માને, ઓર વહાં ઉસકો સાધક કહા તો વો માન્યતા ઓર પુષ્ટ કર લેતા હૈ અપને, યાને ઉસકો વો રહસ્ય નહીં સમજતા હૈ કે જો અંતરંગ મેં સ્થિરતા વહી એકમાત્ર માર્ગ હૈ, પરંતુ જબ સ્થિરતા નહીં હોતી એસે યાની જીને પ્રકટ કિયા હૈ યાની જીસને સમય દર્શન પ્રકટ કિયા હૈ એસે જીવો કો જે બાહ્ય મેં જો વ્રતાદિ હોતે હૈ કહો યા શુભ ભાવ હોતે ઉસકો વ્યવહાર કહા હૈ. લોગોં કી માન્યતા કે દેખો અભી નિશ્ચય નહીં પ્રકટ હુઆ તો વ્યવહાર કરતે કરતે હોગા કે નહીં હોગા, તો નહીં કહેતા, ઉસકો વ્યવહાર નામ ભી નહીં દેંગે. વ્યવહાર નામ તભી દિયા જાતા હૈ જબ અંતરંગ મેં યહાં સમય દર્શન પ્રકટ હુઆ તબ, ઉસકે બિના નહીં, ક્યોંકિ નિશ્ચય ઓર વ્યવહાર એક સાથ હોતે હૈ. उस दिन वो बात आई थी ना, दुविहम पी मोक्षम अगम जाने पाऊ न दी मुनि नियम।
देखो यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि मुनिराजों को 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम है, वो कैसे हैं, शुभराग है। और उस शुभराग जो 28 मूल गुण यानी 5 महाव्रत आदि जो कुछ है, उससे क्या होता है, लोग ऐसा समझते कि उससे वो अंतरंग में शुद्धता प्रकट होगी, लेकिन शुद्धता है वितरागता जो उत्पन्न होती है वो स्वभाव भाव है, और ये राग जो है वो विभाव भाव है। तो विभाव करते करते स्वभाव प्रकट होगा, ऐसी अपनी जो मान्यता है वो मान्यता भूल भरी है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई साथ में जो शुभ राग है उसको भी उपचार से यानी व्यवहार से साधक कहने में आएगा, उसको भी मोक्ष मार्ग कहेंगे कभी कभी।
और भोले लोगों को तो बाह्य में जो व्यवहार दिखता है, बाह्य में व्यवहार ने आचरण जो दिखता है उसी को वो मोक्ष मार्ग मान लेते, उसी को मुनिपना मान लेते, वो अंतरंग में जो आत्मा की बात है उसका पता ही नहीं है, रमणता भी नहीं है और उस संबंधी उपदेश भी नहीं दिया जा रहा है बाहर। बाहर में पर ये व्रत करो, तुम ये करो, तुम ये त्याग करो, तुम ऐसा करो, वो वैसा करो, बस इसी को ही यानी धर्म के नाम पर इसी का उपदेश दिया जाता है। ये अंदरंग की जो बात है वो तो है नहीं, केवल वो ऊपर का रैपिंग बताते हैं, अंदर माल ही नहीं कुछ। बात तो आत्मा की है, आत्मा का धर्म आत्मा से प्रकट होगा। ये तो शरीर बाह्य है परंतु वहां पर भी जैसे जीवों के परिणाम है, जैसे उनके भाव होते हैं, वैसे बाह्य आचरण भी वैसा होता है। उसका ज्ञान कराने के लिए जो कथन है तो वो केवल वो बाह्य आचरण देखकर या सुनकर उतना ही करके मैं मोक्षमार्गी हो गया ऐसा मान लेता है।
देखो एक मजे की बात बताता हूँ, हम वहाँ पहले सोसाइटी में रहते थे 174 में, छोटे थे जब आए थे बम्बई 7-8 साल के, उस समय बहुत सारी हमारी पहचान के मतलब मित्र और रेयरली कोई गर्लफ्रेंड यानी लेडीज फ्रेंड। तो आगे जाके क्या हो गया, वो साध्वी बनी और हम रोज सुबह घूमने जाते थे। हे दिनेश, दिनेश अय्यर, बोलो बोलो के नमोकार मंत्र बोलो छो तुम्हें? मैं चुप बैठा, क्या बोलने का, क्या अभी उसको क्या बोलूँ, क्या माने रोजाना स्वाध्याय चलता है और गए 92 से चलता है, उसको कुछ मालूम नहीं है। नाना नाना नाना, हमारे तो नमोकार मंत्र बोलवो जो ही है, ओछा माँ ओछा 9 वक़्त तो बोलवो जो है। तो हाँ जी हाँ जी, और मैं चला गया। यानी आपका जो कहना है कि शुभ भावों में अटकाते ऐसा ही मानते हैं, ये सारे क्या है, अशुभ में ही कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। ये बात निश्चित है कि दिन में अशुभ भाव 23 घंटा होता है तो शुभ भाव 1 घंटा होता है, जनरल कंपैरिजन।
हाँ देखो अभी हम यहाँ पढ़ते आगे ज्ञान करावा माटे व्यवहार छे, छे तो है ये, पण एनु ज्ञान करवू छे कि नहीं, जानवू तो छे कि नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सबको जानेगा। भले राग होए पण जानवू तो जोईए कि नहीं, आ ज्ञान थी भिन्न चीज छे एवू ज्ञान करवू छे कि नहीं, श्रद्धानो आश्रय भले नथी। ए चार भावांतरो ने अगोचर चाहिए, अगोचर अगोचर એટલે ચાર ભાવથી નીચે લખ્યું છે ને તેમને ભાવાંતરો કહ્યા, પરમ પારિણામિક ભાવ જેનો સ્વભાવ છે એવો કારણ પરમાત્મા। દેખો કારણ પરમાત્મા કિસકો કહા, હા પરમ પારિણામિક ભાવ જેનો સ્વભાવ છે એવો કારણ પરમાત્મા। આ ચાર ભાવાંતરોને અગોચર છે, કારણ પ્રભુ, સમ્ય દર્શનનું કારણ ભગવાન, ये अपना ही शुद्धात्मा उसको भगवान कह रहे हैं, उसी को प्रभु कह रहे हैं, उसी को कारण परमात्मा कह रहे हैं। ये चार भावना आश्रय थी अगम्य छे, चार भाव थी अगम्य छे शब्द लेवानो अर्थ आ छे, चार भावना आश्रय थी अगम्य छे। यानी चार भावों द्वारा अगम्य है ऐसा नहीं लेना है, चार भावों के आश्रय से वो अगम्य है। वैसे तो औदयिक का सवाल ही नहीं है, परंतु अन्य तीन भाव तो सम्यक दृष्टि के होते हैं, तो उससे वो उनके आश्रय से नहीं होते। ये तो त्रिकाली स्वभावनो आश्रय करवाथी गम्य छे अविवाच्य। हा हा, कारण परमात्मा, अहीं त्रिकाली आत्मा ने कारण परमात्मा कहो छे। ये ध्रुव जो स्वभाव भाव है, कारण परमात्मा, जो कार्य उत्पन्न होगा परमात्मा दशा होगी उसका कारण है, इसी के आश्रय से, इसी के लक्ष्य करके, उसी में स्थित होने से ये सारी स्वभाव रूप पर्याय प्रकट होने वाली है। केम के एना आश्रय थी कार्य थाय छे, समझानो काई? ए पण प्रश्न थयो हतो, वीरजी भाई नो दीकरो छे ने त्रिभुवन भाई राजकोट, महाराज आ कारण परमात्मा कहो छो तो कारणनु कार्य तो आवुं जोईए, एम प्रश्न थयो हतो। आत्माने कारण परमात्मा कहो छो पण कार्य तो आवतुं नथी, तो कारण परमात्मा कई रीते? समझ में ना प्रश्न क्या पूछा था किसने, कि कारण है तो कार्य होना चाहिए वहां पर, और वहां तो कार्य नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बस विभाव भाव चल रहे हैं। पण प्रभु कारण परमात्मा छे ए जेनी प्रतीति में आयु एने कारण परमात्मा छे। वो उदाहरण देते ना, अपने घर में घन अंदर गाढ़ा है किसी ने, हमारे हाँ मालूम नहीं है, तो उसके लिए वो नहीं के बराबर है। या हो सकता है कि हमारे पिताजी ने हमारे नाम के कोई एवडीज कोई हुंडी लग के रखी है, हमको उसका पता नहीं है, तो ये नहीं के बराबर है हमारे लिए। तो ये कारण परमात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, त्रिकाल रहने वाली चीज हूँ, और उसके आश्रय से मुझे स्वयं परमात्मा दशा प्राप्त होने वाली है, इसका स्वीकार नहीं, उस संबंधी विचार नहीं, उस संबंधी ज्ञान नहीं, उसकी श्रद्धा तो है ही नहीं, ना ही उसका आश्रय करके ज्ञान ही नहीं, भान ही नहीं, तो उसमें स्थिरता कैसी होगी? तो उसके लिए वो नहीं के बराबर है। ये कह रहे कि प्रतीति में आयो नथी एने कारण परमात्मा क्या छे, ए तो पर्याय अने राग छे। प्रतीति में आयो के भगवान आवो छे एने कारण परमात्मा कहे छे। तो कारण परमात्मा प्रतीति में आयो तो तेने समय दर्शन कार्य थया वगर रहे नहीं। ए चार भाव थी अगम्य छे, ए केवो छे, ए विशेष के छे। अब ये प्रवचन 27 पृष्ठ पर आना भी। नियम सार 38 गाथा मुख्य बात छे, एक कोर भगवान आत्मा अने एक कोर पर्याय मा छ द्रव्य नु ज्ञान आदि। ए पर्याय खरेखर आत्मा नथी, क्या कहना चाहते हैं? एक बाजू त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अने एक बाजू तो छ द्रव्यों का ज्ञान, भले वो केवल ज्ञान भी क्यों है, शायिक भाव भी है, वो तो पर्याय रूप भाव है। वो दिए द्रव्य स्वभाव एक बाजू और एक बाजू बाकी सब पर्याय रूप भाव। तो कहते पर्याय खरेखर आत्मा नथी, ये भिन्न द्रव्यों छ द्रव्यों को जुदा नहीं लिया है, छ द्रव्यों का ज्ञान तो अपने पर्याय में है, हाँ उससे भी नहीं, वो खरेखर आत्मा नथी। जे आत्मा यहाँ उपादेय तरीके कहेवामां आव्यो छे, ए आत्मा तो पर्याय विनानो छे। ए आव्यु ने जो स्वद्रव्यमां जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, ए तीक्ष्ण बुद्धि इटसेल्फ पर्याय है, परंतु उसने आश्रय अपने स्वद्रव्य का लिया है। पर्याय बिना कहने वो द्रव्य पर्याय बिना का हो जाएगा, वो वस्तु ऐसी बात नहीं है। ये द्रव्य कहने से ध्रुव स्वभाव जो है और पर्याय, ये दो भिन्न चीजें हैं, ये कहना चाहते हैं कि स्वद्रव्य में जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, ज्ञायक भाव, एकेन्द्रिय थी पंचेन्द्रिय सुधीना सर्वार सिद्धि नी गमे ते पर्याय अंदर, सर्वार सिद्धि क्यों लिखी, गमे ते पर्याय अंदर होए कि सर्वार सिद्धि वाले भी क्यों ना हो। यानी देव सर्वार सिद्धि वाले देव ऐसा लेना है, एक इंद्रिय से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव उनकी बात कर रहे हैं। એકેન્દ્રિય થી પંચેન્દ્રિય સુધી ના ગમે તે પર્યાય અંદર હો સુધી ની ના પંચેન્દ્રિય સુધી ના સર્વાર સિદ્ધિ ની ગમે તે પર્યાય કોઈ વાત નહીં હમ સમજ સકતે ઉસમે સે કોઈ ભી પર્યાય ક્યો ના હો ભલે નિગોદ હો યા કોઈ પંચેન્દ્રિય હો યા સર્વાર સિદ્ધિ કે દેવ હો પણ દ્રવ્ય તો નિરાવરણ ત્રિકાળી શુદ્ધ છે એને પર્યાય ગમે હા ગમે તે હો પણ દ્રવ્ય તો હંમેશા વૈસા કા વૈસા ત્રિકાળી શુદ્ધ હૈ એ દ્રવ્યને અહીંયા સ્વદ્રવ્ય કહ્યું છે અભી હમ મેં જીવદ્રવ્ય હું ઓર બાકી એ પુદ્ગલ દ્રવ્ય હૈ મેં સ્વદ્રવ્ય મેં જીવદ્રવ્ય હું ઉસકી બાત યહાં નહીં હૈ અભી યહાં વિશેષ આધ્યાત્મિક મેં ભી નિયમસારી વિશેષ ગ્રંથ હૈ ઉસમે ભી યહાં પર્યાય વાલે તત્વો કો અલગ લિખ કર જો કાયમ રહેને વાલા સ્વભાવ ભાવ હૈ ઉસકો સ્વદ્રવ્ય કહા ક્યુંકિ જીવાદી બહિર તત્વ કહે કે ઉસકો પરદ્રવ્ય કહે રહે સભી પર્યાયો કો યહાં પરદ્રવ્ય નામ દિયા હૈ ઉસ અપેક્ષા સે બાત લેની હૈ યાની કે ને દ્રવ્ય તો નિરાવરણ ત્રિકાળી શુદ્ધ છે એ દ્રવ્યને અહીંયા પરદ્રવ્ય સ્વદ્રવ્ય કહ્યું છે અને સ્વદ્રવ્યમાં જ એની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ એને અંતરંગમાં રમણતા સ્થિરતા હૈ એવા આત્માને આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે અને જીસને ઉસકો જાના હૈ ઉસમે સ્થિર હુઆ હૈ ઉસી કે લિયે વો ઉપાદેય હુઆ હૈ કેવલ કહેને સે ઉપાદેય નહીં હોતા ઉપાદેય કરે છે પર્યાય ક્યા કહા ઉપાદેય કિસને બનાવ્યો ઉસકો લક્ષ્ય કિસને ક્યા પર્યાયને પણ ઉપાદેય છે તો દ્રવ્ય કરને વાલી તો પર્યાય ક્યુંકિ કાર્ય સબ પર્યાય મેં હિ હો રહા હૈ લક્ષ્ય કરને વાલી પર્યાય હૈ પણ લક્ષ્ય કિસકા ક્યા હૈ ઉસને દ્રવ્ય કા ફરીને ત્રિકાળી સ્વભાવ જે ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એ ઉપાદેય આદરણીય સ્વીકાર કરવા લાયક છે ઉપાદેય કા અર્થ ક્યા આદરણીય ઉસી કા અર્થ સ્વીકાર કરવા લાયક છે પણ સ્વીકાર કરે છે કોણ તો કે તે પર્યાય કેમ કે ધ્રુવમાં આદર કરવો કે સ્વીકાર કરવો કે પરિણમન કરવું એ એનો સ્વભાવ નથી ધ્રુવ તો ધ્રુવ કાયમ રહેને વાલી ચીજ હૈ તો ઉસમે કાર્ય નહીં હોતા કાર્ય તો પર્યાય રૂપ પર્યાય કોઈ કાર્ય કહેતે એ તો ત્રિકાળી ભગવાન ધ્રુવ છે જેને પરતરફનું બધું લક્ષ્ય છૂટી ગયું છે અને માત્ર આત્મા જેને દૃષ્ટિમાં આવ્યો છે એવા આત્માને એ આત્મા ઉપાદેય છે સમજાનું કઈ દેવગુરુ શાસ્ત્ર પણ ઉપાદેય નથી કે હમ તો ભગવાન કી ભક્તિ કરતે હૈ ભગવાન કે દ્વારા હમે એ ઉપદેશ મિલા હૈ ગુરુઓ ને એ ઉપદેશ હમકો સમજાયા હૈ અપની ભાષામાં ઉન્હોને સ્વયં અનુભવ કરકે ઓર શાસ્ત્ર મેં તો એ બતાએ ઇસલિયે હમે વો હમ તીનો કી પૂજા ભી કરતે હૈ પ્રતિદિન ઉનકો નમસ્કાર કરતે ઉનકા સ્મરણ કરતે ઉનકા ઉપદેશ યાદ કરતે હૈ તો કહેતે કી પરંતુ વો ઉપાદેય નહીં હૈ ક્યુંકિ એ તીનો ને ક્યા બતાયા હૈ કે તું સ્વયં અપના લક્ષ્ય કર તું સ્વયં કારણ પરમાત્મા હૈ તો અપને સ્વભાવ ભાવ કા લક્ષ્ય કરને સે તુજે મોક્ષ માર્ગ પ્રકટ હોગા સભીને વાત યહી બતાઈ જ્ઞાનીઓને સર્વજ્ઞ ભગવાન પ્રવચન સારની 80 ગાથામાં એમ કહે છે કે જેસે નિયમસાર અભી હમ પઢ રહે વૈસે પ્રવચન સાર નામ કા કુંદકુંદાચાર્ય કા એક ગ્રંથ હૈ તો વહાં બતાતે હૈ જો જાણદી અરહંતમ દૌવત્ત ગુણત્ત પજ્જયત તેહિમ જે અરિહંતના દ્રવ્ય ગુણને પર્યાય જાણે સો જાણદી અપ્પાણમ એ તો નિમિત્તથી એક કથન છે અને વો અપને કો જાણતા હૈ જિસને અરિહંત ભગવાન કે દ્રવ્ય ગુણ ઓર પર્યાય કો નિશ્ચિત કિયા હૈ વો અપને કો જાણતા હૈ ક્યુંકિ જૈસે અરિહંત કા દ્રવ્ય મેરા ભી વૈસા હૈ જિતને ગુણ ઉનમે હૈ ઉતને હી મેરે મેં હૈ ઓર ઉનકી પર્યાય કૈસી હુઈ તો સ્વભાવ જૈસી પર્યાય પ્રકટ હુઈ હૈ અને ઉસે તો ઉનકા સ્વભાવ ભાવ કા પતા ચલતા હૈ જૈસે સર્વજ્ઞતા હૈ વિતરાગતા હૈ તો મેરે મેં ભી એસી સર્વજ્ઞતા વિતરાગતા સ્વભાવ મેં ભરી પડી હૈ તો જો અરિહંત કા સ્વરૂપ નિશ્ચિત કરતા હૈ કેવલ જ્ઞાન કહો યા સર્વજ્ઞતા કા ભી સ્વરૂપ નિશ્ચિત કરતા હૈ ઉસકે દ્વારા વો સબ નિશ્ચિત હો જાય ને ક્રમબદ્ધ પર્યાય આદિ સભી બાતે નિશ્ચિત હોતી હૈ તો उसको तो अपने सर्व के स्वभाव का आलम्बन हो जाता है और उसका अनुभव होता है। परद्रव्यनु द्रव्यगुण पर्यायनु ज्ञान ये तो परलक्षी ज्ञान छे, परलक्षी राग छे, ज्ञान नहीं, सॉरी। फिर से परद्रव्यनु द्रव्यगुण पर्यायनु ज्ञान ये तो परलक्षी राग छे। देखो ये शास्त्र का अभ्यास भी है वो परलक्षी है और वहां राग है, भले शुभ राग है, भक्ति भाव है, समझने की जिज्ञासा है, पर लक्ष्य पर का है। नियम सार मा आवश्यक अधिकार मा पण एम आयु छे के पोताना द्रव्य गुण ने पर्याय ए त्रण ना विचार करे छे ए पण पराधीन छे। धी दीर्घ होता है ना अधीन, धी दीर्घ चाहिए। क्या कहा, ये जो अभी हम पढ़ेंगे ना, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, ये सब हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि जिसे कुछ मालूम नहीं है उसको शुरुआत में तो ये तो टर्मिनोलॉजी भी सीखनी है, क्योंकि आचार्यों ने क्या उपदेश दिया है वो पता ही नहीं चलेगा उसको उसके बिना। परंतु ये कैसा है पूरा, इसका विचार करना ये पराधीन है, क्योंकि भेदों का है और वो राग भाव उत्पन्न होता है इसमें, पर का लक्ष्य है, अपना लक्ष्य हुआ नहीं। ये हमारा हेतु तो यही है कि हम अपने को समझे, और वो समझो ज्ञानियों ने जिस भाषा में बताया है वो भाषा समझने के लिए हम इसका ज्ञान कर रहे हैं। परंतु केवल उसको पढ़ लिया, उसको रट लिया, उसको बिल्कुल याद कर लिया, दूसरों को भी पढ़ाया, उससे कुछ कर्तव्य, उससे कुछ नहीं हमें हासिल होने वाला। उसमें जो बात बताई जाती है उसके द्वारा हम ये जो त्रिकाली स्वभाव की बारम्बार जो महिमा बताई जा रही है वो करेंगे तो हमारा सारा सीखना कार्यकारी है, नहीं तो बेकार का है। जैसे अन्य हमने पढ़ाई की लौकिक, वैसे ये पढ़ाई की, उसके लिए नहीं है, ये अपना अनुभव करने के लिए बात है। भगवान ना द्रव्य गुण पर्याय जानवा ये तो निमित्त थी बात छे, ए तरफ नु लक्ष्य छोड़ी ने। पाठ तो एम छे के जो जाना दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्यते हिम सो जाना दी अपानम, यानी जो अरिहंतों को उनके द्रव्य से, गुण से और पर्यायपने से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, ये वहाँ लिखा है ऐसा। परंतु उसका सही अर्थ क्या लेना है, देखो पण एवो आत्मा लीधो छे के जे अरहंतनो सर्वज्ञपनानु जेने अंतरमा परलक्षी ज्ञानमा यथार्थ निर्णय थयो, परलक्षी ज्ञान ए पोतानु स्वलक्ष्य करवा माटे लीधु छे, यानी वो तो मात्र अरिहंतों का नहीं है, सर्वज्ञता का स्वरूप निश्चित हो जाता है तो अपना स्वभाव का पता चलता है। ए पोतानु स्वलक्ष्य करवा माटे लीधु छे के जेवा सर्वज्ञ छे एवो ज हूँ छूं, मारो स्वभाव ज सर्वज्ञ सर्वज्ञ छे, यानी सब कुछ जानने वाला, सब कुछ में सबसे पहले अपने स्वयं में आता है। हम बाहर गिनाते जीव अनंत पुद्गल अनंत वो सब तीन काल के समय आकाश के ये सब हम गिनेंगे, परंतु सबसे उसने जाना कि उसका अपने को जाना है, यानी अपने में रहकर वो सबको जानता है। पोताने अने परने जानवानो मारो त्रिकाण स्वभाव छे, क्या कहा, पोताने अने परने जानवानो जिसको कहने स्वर पर प्रकाशक, मारो त्रिकाल स्वभाव छे। कब त्रिकाल कहा, तो अज्ञान अवस्था में, हाँ स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। ए त्रिकाल स्वभाव नो पण नियम सार मा शुद्ध उपयोग अधिकार मा कह्यू छे ए त्रिकाल स्वभाव पण स्वपरणे पूर्ण जाने छे। जानवानो अर्थ के एनी शक्ति एवी छे, समझानो काई, जाने छे तो पर्याय छे, ए पर्याय मा जानवा लायक आदरवा लायक चीज शू छे, आत्मा जे त्रिकाली शुद्ध प्रभु पर्याय ने पूर्ण स्वभाव मा ढाळवे। पहले में पहले पूर्ण स्वभाव का निर्णय होना चाहिए ना, कि मेरा स्वभाव क्या है, कितना जानने का स्वभाव है, क्या क्या है स्वभाव में, तो उसका स्वभाव को नक्की करेंगे तो उसको जानते रहेंगे। तो पर्याय ने पूर्ण ढालवी, स्वभाव में पूर्णपणे ढालवी, पूर्ण स्वरूप में पर्याय ने ढालवी, ए आत्मा उपादेय कहेवामां आव्यो छे। यानी उसके बिना, उसका लक्ष्य करके, उसी के सन्मुख होकर, उसी में लीन नहीं हुएंगे तो तब तक उसको उपादेय नहीं कहेंगे। हवे आवी बातों लोगों ने, बापू मार्ग तो एवो छे भाई, हा हा, एवा आत्मा ने आत्मा खरेखर उपादेय छे। कैसे आत्मा लिया? जिसने परद्रव्य का, परद्रव्य में यहाँ सब पर्यायों को परद्रव्य कह दिया, अन्य तो परद्रव्य है ही है। जीव के पर्याय में जो बात है, राग द्वेष का परिणाम हुआ, आश्रय बंध संवरण जरा सब, उसका लक्ष्य छोड़कर अपने सन्मुख हुआ, उसके लिए वो खरेखर उपादेय है। जेनु बधु पर लक्ष्य छूटी गयु, निमित्तनु तो छूटी गयु, रागनु पण लक्ष्य, रागनु पण छूटी गयु। इच्छु दीर्घ चाहिए, कहीं रस्व किया है, कहीं दीर्घ किया है, छूटी गयु, छू बराबर दीर्घ चाहिए, छूट जाना, छूटी गयु। वहां दो बार दीर्घ किया, एक बार रस्व किया है, पण पर्याय नु पण लक्ष्य छूटी गयु। कोई गुजराती वाले रस्व के दीर्घ छूटी गयु,
हाँ
पहले दो बार दीर्घ आया ना, वो बराबर है, छूटी गयु। क्या कहते हैं, निमित्तनु, जिसके निमित्त से हमें ज्ञान हुआ था। तो भगवान का लक्ष्य छोड़ने को तैयार है, पर गुरु का लक्ष्य नहीं। लेकिन निमित्तनु तो छूटी गयु, राग नु लक्ष्य छूटी गयु, यानी भगवान के भक्ति, जो भक्ति रूप जो राग हमारी पर्याय में, उसका भी लक्ष्य छूट गया, पर पर्याय नु लक्ष्य पण छूटी गयु। अब जो कोई सम्य दर्शन आदि की पर्याय होने वाली, उसका भी लक्ष्य छूट गया है। एवी पर्याय मां त्रिकाणी भगवान पूर्णानंद नु निधान ने खान, एवो आत्मा उपादेय छे। यानी जिसने वो निमित्त का, राग का, अपना पर्याय स्वयं का भी लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली स्वभाव भाव का आश्रय लिया है, उसके लिए आत्मा उपादेय है। ए आत्मा सम्य दर्शन ज्ञान मां उपादेय जाण्यो, ए पण पर्याय छे। जानने वाली तो सम्य दर्शन की, सम्य ज्ञान की पर्याय है, वो सम्य ज्ञान की पर्याय में आत्मा उपादेय हुआ है, परंतु वो स्वयं पर्याय उपादेय नहीं हुई, ये कहना चाहते हैं के सम्य दर्शन ज्ञान मां उपादेय जाण्यो, ए पण पर्याय छे। तेने पण अहींया तो परद्रव्य कहेवामां आव्यु छे, झीणी वात छे भाई, केम के जेम परद्रव्य माथी, वो द्र बराबर करना, द्व हुआ है, परद्रव्य माथी नवी पर्याय नथी आवती, ए रीते त्रिकाणना आश्रय थी संवर निजरा मोक्षनो मार्ग उत्पन्न थयो, पण एमाथी नवी शुद्धिनी पर्याय नथी आवती। पर्यायमाथी शुद्धिनी पर्याय नथी आवती, द्रव्यमाथी आवे छे। एक बाजु कह रहे हैं आप कि द्रव्य पर्याय का करता नहीं है, है ना, वो तो परिणमता नहीं है, और एक बाजु कहते हैं द्रव्यमाथी आवे छे। ये तो जहाँ जिस अपेक्षा से बात है वहाँ समझना। जैसे परद्रव्य में से पर्याय नहीं आती है, तो पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती, तो द्रव्यमाथी आवे छे। तो पर्याय ने परद्रव्य कहीने त्रिकाणी ने स्वद्रव्य कहूं, जीनी वात छे भाई, ए आत्मा। अभी ये जो अपेक्षा है ना, एंड आपके लिए तो एकदम ये हाईएस्ट लेवल की अपेक्षा चल रही है। पहले तो द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उसका सामान्य स्वरूप क्या है, वहां तो कहेंगे कि द्रव्य ही अपने पर्याय का करता है, परंतु यहाँ जो परम आध्यात्मिक की बात चल रही है, क्योंकि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कभी आप हायर लेवल की पढ़ोगे, कभी कभी बेसिक चलेगी आप, तो आपको बराबर उसकी अपेक्षा समझना है। हो सकता है शुरुआत में गड़बड़ी भी लगेगी कि यहाँ एक बार ऐसा कहते हैं, एक बार ऐसा कहते हैं, तो अपेक्षा जब समझ में आ जाएगी तब, और जब जितना विस्तार से ज्ञान होगा उतना कन्फ्यूजन और कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो संडे को तो फंडामेंटल्स चल रहे हैं, ये एकदम हायर लेवल की बात है। ए आत्मा उदयक आदि चार भावांतरों ने अगोचर हुआ थी। प्रभु ए उदय भाव जे छे, दया दान व्रत भक्ति विनय आदि विकल्प जे छे, ए उदय भाव छे। देखो औदयिक भाव आप बताएंगे कौन कौन से होते, कितने होते हैं औदयिक भाव? 21 है। उसके मुख्य मुख्य बताना है आपको।
चार दशा, तीन वे, छह रेशा,
असिद्धत्व, अज्ञान,
अज्ञान और
असंयम। देखो चार गति यानी गति औदयिक भाव है, चार कषाय क्रोध मान माया लोभ है, तीन वेद स्त्री वेद पुरुष वेद नपुसक वेद, छह लेशा है जो कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल वो लेशा है। उसके बाद चार होते हैं ना, बात आठ ग्रुप होते हैं, आठ ग्रुप है। अभी हमने कौन से देखे, गति, गति कहने से चार गति है, कषाय कहने से चार कषाय आ गए, फिर वेद कहने से तीनों वेद आ गए, और फिर लेशा कहने से छो आ गए। अब चार बातें रही, वो सिंगल सिंगल है, मिथ्या तो है, अज्ञान है, असंयम है और असिद्धत्व है। असिद्धत्व वो तो चौदहवें तक सिद्ध नहीं हुआ है, वो असिद्धत्व भाव रहेगा चौदहवें गुणस्थान तक। इस तरह से आठ मुख्य है, और फिर उसके भेद तो हमको कर सकते हैं, इसके टोटल 21 हो जाते हैं। तो यहाँ जो राग भाव है ना, दयादान, ये क्या है? ये राग भाव है, कषाय है ना, भले मंदता है परंतु है कषाय। तो कहते देखो यहाँ लिखा है ना उदय भाव का, उदय भाव ने औदयिक भाव, तो दया दान व्रत भक्ति विनय आदि विकल्प जे छे ए उदय भाव छे। ये उदय भाव, अरे वो उसका उदय भाव चल रहा है ना, जो कोई क्रोधमान माया लोभ के हम उदय भाव कहते हो, जो लोभ हुआ है, अरे वो उसका उदयिक भाव है, उसको गौण करना चाहिए, ऐसे हम एक दूसरे को सलाह देते हैं। परंतु यहाँ तो ये तो दया दान वगैरह नहीं, नहीं वो तो हम करते हैं ऐसा, यानी उसमें कर्तापना की बुद्धि पड़ी उसके पीछे। ए उदय भाव छे, ए उदय भाव थी तो अगम्य छे, यानी उदय भाव से जाना नहीं जाता। हाँ, यानी राग से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि राग स्वयं अपने को नहीं जानता है, क्योंकि हमारे में राग उत्पन्न हुआ, क्रोध हुआ, क्या क्रोध ने क्रोध को जाना कि ज्ञान ने क्रोध को जाना? तो ये उदय भाव ने औदयिक भाव को जानने वाला भी मैं जुदा हूँ। तो औदयिक भाव ने राग के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्रोध करने से ने क्रोध से आत्मा नहीं जाना जाता है, ना ही क्रोध दूसरे को जान रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उदय भाव थी तो अगम्य ही, उसकी तो बात ही नहीं, परंतु सम्य दर्शन जो औषमिक भी हो सकता है, क्षायिक भी हो सकता है, क्षौषमिक भी हो सकता है, उससे भी जाना नहीं जाता, ये कह रहे हैं। उससे जाना नहीं जाता है ना, जानने वाला तो वही पर्याय है, पर उसके आश्रय से जाना नहीं जाता, इसलिए उससे अगम्य है ऐसा कहने में आता है, अगोचर है ऐसा कहते हैं। देखो फिर से, तो उदय भाव थी तो अगम्य छे, एना आश्रय थी तो नहीं, पण एनाथी पण आत्मानो ख्याल नथी आवतो। हवे उपशम क्षोपशम शायिक रह्या, ये छे तो निर्मल पर्याय, एना आश्रय थी ख्याल मां नथी आवतो, ख्याल में ने उसके अगम्य छे, क्यों कहा? वो पर्याय के आश्रय से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ए कारणे चार भाव थी आत्मा अगम्य अने अगोचर कहेवामां आव्यो छे। छतां समय दृष्टिना उपशम भाव अने क्षोपशम भाव मां गोचर थाय छे, यानी उसमें वो जाना जाता है। हाँ, यानी आत्मा का अनुभव हो रहा है ना वहाँ पर। ये चार भाव थी अगोचर कहूँ, अगम्य कहूँ, मुमुक्षु कहते आश्रयनी अपेक्षा थी। हाँ, आश्रयनी अपेक्षा थी। हाँ हाँ, ये तो भूदत्तम अस्सिदो, एक शब्द चाहिए। हाँ, भूदत्तम अस्सिदो ऐसा शब्द है वो, जो अग्यारहवीं गाता, ये तो समय सार की बात है, समय सार में ग्यारहवीं गाथा है, एनु विशेष स्पष्टीकरण छे। मूल गाथा अग्यारहवीं छे, ये आखा जैन दर्शन नो प्राण छे। एक समय मा अनादि अनंत जे भूतार्थ चीज छे, एम कहूं पण ठीक छे। क्या कहा? एक समय मा त्रिकाल का क्योंकि प्रत्येक समय में वो विद्यमान 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 है। क्या कहा? देखो, तीन काल के समय लेकर अनादि अनंत नहीं कहा उसको, एक समय में अनादि अनंत भूतार्थ चीज बताई। तो भूतार्थ चीज यानी ये जो कायम रहने वाली ध्रुव भाव जो है उसको भूतार्थ है ना, वो है ऐसा कहेंगे, और जो अन्य जो भाव है रागादि भाव उसको अभूतार्थ कहकर है ही नहीं कहेंगे, है कि नहीं कहेंगे, क्यों? गौण करके। द्रव्य में से पर्याय कहीं चली नहीं जाएगी, द्रव्य कभी पर्याय बिना का नहीं होता है, परंतु अभी पर्याय उनको यहाँ गौण करने उसको व्यवहार करके परद्रव्य कह रहे, क्यों? हमें मात्र स्वद्रव्य जो स्वभाव भाव कायम रहने वाला भाव है उसका लक्ष्य करने के लिए, उन सबका लक्ष्य छुड़ाने के लिए वो है ही नहीं ऐसा कहेंगे। अभूतार्थ कहा उसको, अभूतार्थ ने सर्वथा नहीं ऐसा नहीं अर्थ लेना, गौण कर देना। चली नहीं, नहीं, द्रव्य हमेशा पर्याय बिना कभी नहीं होगा, वो हमेशा द्रव्य किसी न किसी, वो चली जाना वो अलग है, वो व्यय होने को चली जाता कहते हैं, यहाँ तो चली नहीं जाती है, नहीं द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता कभी, ये मुझे कहना है, पूछना ऐसा। हाँ, हर समय कोई ना कोई पर्याय विद्यमान तो रहेगी ही रहेगी, परंतु वो पर्याय के लक्ष्य से आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसलिए उसको वो गौण कर देते हैं, गौण है नहीं कहेंगे उसको। वर्तमान में जे पूर्ण छे, चौथी लाइन उत्तर की, वर्तमान में पूर्ण छे ने, अभी वो चीज जो जिसको हम भूतार्थ कह रहे हैं, जिसको यहाँ कारण परमात्मा कह रहे हैं, परम पारिणामिक भाव कह रहे हैं, तो कहते वो परिपूर्ण है। जीवों ने अपने को अधूराश, मैं अधूरा हूँ मान लिया है, पहले में पहले ये जो कारण परमात्मा रूप मैं हूँ, ये बार बार बताते ना स्वामी जी, तू परमात्मा छो एम पहला नक्की कर, ये परमात्मा पना की, वो पर्याय में नहीं है परमात्मा, पर्याय को गौण करके जो ध्रुव भाव है, स्वभाव भाव है, वो मैं परमात्मा हूँ, वो परिपूर्ण है, उसमें कोई अधूराश नहीं है। एज आत्मा चार भाव थी अगम्य छे, एटले चार भावना आश्रय थी गम्य नहीं थतो, क्षायिक भावना आश्रय थी गम्य नहीं थतो, हा हा, छता सम्य दृष्टि ने गम्य छे, एनो अर्थ के त्रिकाली नो आश्रय लीधो छे, सम्य दर्शन नी पर्याय नो आश्रय नहीं लीधो, ए दृष्टि ए उपादेय तरीके स्वीकार्यु छे, ए दृष्टि नो आश्रय नहीं लीधो, ये दृष्टि यानी जो सम्य दर्शन के परे उसको दृष्टि कहा, दर्शन यानी श्रद्धा की बात। जे भगवान पूर्ण परमात्मा, लो आ तमारा परमात्मा याद आया, आ लई गया इंटरव्यू, वांची गया छे, दस पाना छे वांचा छे, आ परमात्मा स्वरूप एक समय ने पर्याय एनो आदर करे छे, पण ए पर्याय नो आश्रय करवा लायक नथी, આવી વાત આકરી લાગે। વળી સોનગઢ વાળાએ નવું કાઢ્યું એમ કહે છે, નવું નથી પ્રભુ, આ તો અનાદિનો માર્ગ છે, અનાદિના અનંત તીર્થંકરો અનંત સર્વજ્ઞનો આ માર્ગ છે, ભરત ક્ષેત્રમાં પ્રભુનો તીર્થંકરનો સર્વજ્ઞનો વિરહ પડ્યો, એમનો તો વિરહ પડ્યો પણ કેવળ જ્ઞાનનો વિરહ પડી ગયો, વિરહનો અર્થ કે પોતામાં કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય એનો પણ વિરહ પડ્યો, એને ભી એસી યોગ્યતા નહીં જીવન કી ઇસ કાલ મેં કે ઉનકો કેવલ જ્ઞાન હો જાય, કેવલ જ્ઞાન ક્યા, ક્ષાયિક સમય દર્શન ભી નહીં હોગા, કોઈ શ્રેણી ભી નહીં ચડેંગે ઇસ કાલ મેં। હા, મુનિ સાત્વિક ગુણસ્થાન તક કા પુરુષાર્થ હોતા હૈ ભરત ક્ષેત્ર મેં, બરોબર હૈ, યહાં લિખા ના અભી ઉપર, ભરત ક્ષેત્ર માં લિખા થા ઉપર પહેલી લાઈન મેં લાસ્ટ, હા, क्योंकि ये जो पंचम आरा जिसको कहेंगे ये तो यहाँ होते, छह कालों का परिवर्तन यहाँ भरत क्षेत्र में हो रहे हैं, विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल होता है, हमेशा ही वहाँ सर्वज्ञ भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते रहते हैं, सामान्य केवली तो होते ही रहते हैं, लाखों केवली विराजमान है वहाँ पर, तो यहाँ हमारे यहाँ विरह हो गया ये कह रहे, और हमारी अभी योग्यता भी ऐसी नहीं कि कोई अभी यहाँ पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट करे, पण केवल ज्ञान नहीं पर्याय थी पण नजीकनी सम्य दर्शननी पर्याय एमा आत्मा गम्य थई जाय छे। आहा हा, क्या कहा, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है पर सम्य दर्शन तो अभी हो सकता है ना, होता भी है, तो उससे तो आत्मा गम्य होता है, अंदर भगवान पूर्णानंदनो नाथ एनो विरह नथी, समझानो कहीं। અહીં તો એમ વાત લીધી છે. દિગંબર સંતો તો વાત કરે છે. પેજ નંબર 29. હા કોઈ વાત નહીં, પણ યહાં તો એ વાત હો રહી હૈ કે જો ચાર ભાવ હૈ ને, ઔષમિક, સૌષમિક, શાયિક ઓર ઔદયિક, ઉન ભાવોન સે આત્મા ગમ્ય નહીં હૈ. આત્મા એને કોણ સા વો ત્રિકાલી સ્વભાવ ગમ્ય ને ઉનકે દ્વારા તો જાના જાતા હૈ, ઔષમિક, સૌષમિક ઓર શાયિક ભાવ સે તો જાના જાયેગા, પરંતુ ઉસકે લક્ષ્ય સે નહીં જાના જાયેગા, યે કહે રહે. અહીં તો એમ વાત લીધી છે. દિગંબર સંતો તો વાત કરે છે, કોઈ સમ્યકથી ભ્રષ્ટ થાય છે, નવા કર્મ બાંધે એવી વાત કરે, છતાં મૂળ વાત તો એવી છે, એવી કહે છે કે જેને આ ભગવાન આત્મા વર્તમાન પર્યાયમાં અંદર ઢળીને જે અનુભવ કર્યો, અંદર ઢળીને કા અર્થ ક્યા હૈ, એ જો ત્રિકાલી સ્વભાવ ભાવ હૈ ઉસકા લક્ષ્ય કરકે ઉસમે સ્થિર હો ગયા, ઉસકો કહેંગે અંદર ઢલ, એ અનુભવ સમ્ય દર્શન અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ત્રણ સાથે છે. અનુભવ, લક્ષ્ય, પ્રતીત એવા ત્રણ બોલ શ્રીમદમાં છે. આત્મસિદ્ધિમાં સમજાણું કાંઈ, અનુભવ, લક્ષ્ય, પ્રતીત. લક્ષ્ય એ જ્ઞાન છે, પ્રતીત એ શ્રદ્ધા છે, અને અનુભવ એ આનંદનું આચરણ છે. છે ને આત્મસિદ્ધિમાં છે, એમાં કેટલીક વાત તો શ્રીમદે ઘણી ઊંચી કરી છે. ફક્ત એક શ્વેતામરણે દિગંબરની ભિન્નતા બહાર આવી નહીં, એમને છેલ્લે છેલ્લે તો બહાર કરી નાખી. સત્શાસ્ત્રના નામે શ્વેતાંબરનું એક પણ શાસ્ત્ર નથી, પણ એને એના ભક્તોને છોડતા મુશ્કેલી પડે છે. શ્વેતાંબરનો આશ્રય છોડી શકતા નથી. શ્વેતાંબર પણ છે, દિગંબર પણ છે, અને શ્વેતાંબર બે જૈન છે એ વાત ખોટી છે. સમજાણું કાંઈ, અહીંયા તો દિગંબરમાં પણ જે વાત છે એ ત્રિકાળીના આશ્રયથી સમયદર્શન થાય છે એમ ન માનતા, દયાદાન અને વ્યવહાર કરતા કરતા ધર્મ થશે એ પણ જૈન નથી. ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ, મૂળ માર્ગ તો દિગંબર જૈનીઓ મેં હૈ, પરંતુ અભી દિગંબર જૈનીઓ કે 90 કે 95% 99 કહો તો ભી ઠીક હૈ, તો એ દયા ધર્મ કો હી, દયાદાન વ્યવહાર એને જો દીક્ષા એ વ્રતાદિ કરને કોઈ ધર્મ માનને વાલે હૈ એસે બહુતાંશી જીવ હૈ, યે કહે રહે. વો ભી ખરેખર જૈન નહીં હૈ, ક્યોંકિ જો મૂળ માર્ગ ઉસકા હી લોપ કર દિયા ના, મૂળ માર્ગ કા હી લોપ કરકે એ ગલત માર્ગ કી પ્રરૂપનાર ઉસી કા ઉપદેશ ચલ રહા હૈ, ઓર તુમ યે ઇતના અંગીકાર કરો બાદ મેં ઉસકો ધર્મ હોગા, એ ગૃહસ્થ અવસ્થા મેં સમય દર્શન નહીં હોતા એસા કહેને વાલે ભી મિલતે આજકલ. ભગવાન આત્મા દેહ દેવળમાં અમૃતના પૂર ભર્યા છે, એને એ દેહ સે કોઈ સંબંધ નહીં ને, ભલે હમ કહેંગે અભી દેહ દેવળમાં રહેતે, પરંતુ મેં તો મુજ મેં હું ઓર પરિપૂર્ણ હું, ઓર વો કિસકી બાત યે પર્યાય હૈ વહાં પર જાનને કે લિયે, પર્યાય મેં ક્યા બાતે હો રહી, વો જ્ઞાન કા ગેય હૈ, પરંતુ લક્ષ્ય ભી ઉસકા છોડ કર કહાં કરના હૈ, તો ત્રિકાલી અપના સ્વભાવ ભાવ ઉસકા લક્ષ્ય કરને કે લિયે પહેલે ઉસકા નિર્ણય તો હોના ચાહિયે કે કૈસા હૈ વો, જો હમ પઢ રહે કિતને ગુણો કા પિંડ હૈ, ક્યા ક્યા હૈ. તો કહેતે અતિન્દ્રિય અમૃત મધુર સ્વાદથી ભરેલો છે, ક્યોંકિ જો અનંત ગુણો કા અભેદ એસા જો અનુભવ વહાં હોતા હૈ, જબ સમ્યક દર્શન હોતા હૈ તો સભી અનંત ગુણો કા એક અંશ રૂપ વહાં પ્રકટ હો જાતા હૈ, ઉસકે કારણ વો આનંદ કી અનુભૂતિ હોતી હૈ, પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. જેમ કળશો હોય છે ને, શું કહે છે કળશાને, લોટા, બહારની ભાષા ભૂલી જવાય છે, લોટા લોટા, લોટામાં પાણી ભર્યું છે એ પૂરેપૂરું ભર્યું હોય, એમાં લોટા જેવો દેહ છે. જો આ દેહમાં ભિન્ન ભગવાન દેહ સે ભિન્ન હૈ બિલકુલ, અભી હૈ દોનો એક ક્ષેત્ર મેં વિરાજમાન હૈ, જેસે હમ કહેતે ના વો લોકાકાશ ભી હૈ વહાં પર, અભી પંચાસી કાય મેં વાત ચલ રહી, વહાં પૂરા મેં ધર્મદ્રવ્ય હૈ, પૂરે મેં અધર્મ દ્રવ્ય, અભી યહાં જો મેં પૂરા હું ઉતને પૂરે મેં કર્મ ભી પડે હૈ, ઉતને પૂરે મેં દેહ ભી પડા હૈ, દેહ સે મેં જુદા હું. ઇસલે કહેતે દેહમાં ભિન્ન ભગવાન અમૃતના પૂરથી પૂર્ણ ભરેલો છે. આ દેહ પણ કળશ જેવો છે ને, જો આ માથું ઉપરના લોટા જેવો ભાગ છે. અભી યે નહીં હોગા આગે, બડા પેરેગ્રાફ હૈ, અભી યહીં રુકતે હૈ. જાવાની કે જ્ઞાન તૈ સૂઝે લો કાલો, સોવાણી મસ્તકનમ સદા દેતા.